एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
कौन सी किताब है?
रिची रॉबर्टसन की काफ्का। ये किताब फ्रांस काफ्का के जीवन और उनके लेखन को मतलब एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है।
फ्रांस काफ्का, अरे वाह, ये नाम सुनते ही तो दिमाग में एक अजीब सी, थोड़ी उदास सी तस्वीर आती है ना?
बिल्कुल, वो जटिलता, वो निराशा और वो अजीबोगरीब नौकरशाही जिसे सब काफ्केस्क कहते हैं।
हाँ, काफ्केस्क। लेकिन क्या काफ्का असल में बस यही थे या ये सिर्फ एक बना बनाया मिथक है?
सही सवाल। और देखिए, रॉबर्टसन की किताब इसी सवाल को उठाती है और उसका जवाब भी देती है।
अच्छा।
हाँ, ये दिखाती है कि काफ्का के आसपास जो धारणाएं बन गई हैं कि वो बहुत अकेले थे, समाज से कटे हुए थे, गहरे दुख में थे, उनसे हटकर भी एक असली इंसान था।
एक लेखक था।
हाँ, और उन्हें सही मायने में समझना आज भी जरूरी है, क्योंकि देखिए, हम सब आज भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से जूझते हैं।
बड़े बड़े सिस्टम, अकेलापन, अपनी पहचान।
सही बात है, जैसे काफ्का अपने समय में जूझ रहे थे।
बिल्कुल।
तो रॉबर्टसन हमें काफ्का को उनके अपने समय के आईने में देखने में मदद करते हैं, न कि सिर्फ हमारे आज के नजरिए से।
तो ठीक है, किताब में गहरा जाने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लें। ये रिची रॉबर्टसन कौन है? मतलब काफ्का जैसे लेखक पर लिखने के लिए क्या बात है उनमें?
देखिए, रिची रॉबर्टसन कोई मामूली एकेडमिक नहीं है। वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में जर्मन भाषा और साहित्य के बहुत ही माने हुए प्रोफेसर है।
अच्छा।
और उनकी खासियत सिर्फ जर्मन साहित्य ही नहीं है, वो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के आखिरी दौर के इतिहास और संस्कृति के भी मतलब बड़े विशेषज्ञ हैं।
ओह, और काफ्का तो उसके दौर के थे।
बिल्कुल, यही बात महत्वपूर्ण है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ लिटरेचर के एंगल से नहीं देख रहे, इतिहासकार वाला नजरिया भी है।
हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है काफ्का को समझने के लिए, क्योंकि रॉबर्टसन सिर्फ उनकी कहानियां नहीं पढ़ते, वो उनके पूरे माहौल को देखते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। उन्हें जर्मन, चेक, हिब्रू, ये सब भाषाएं आती हैं।
अरे वाह।
तो वो काफ्का के खत, उनकी डायरी, उस जमाने के दस्तावेज, सब कुछ ओरिजिनल में पढ़ सकते हैं।
तो ये उन्हें उन लोगों से अलग करता है जिन्होंने बस मतलब किसी एक थ्योरी के हिसाब से काफ्का को समझा, जैसे मनोवैज्ञानिक या धार्मिक नजरिए से।
हाँ, काफी हद तक रॉबर्टसन का जोर सबूतों पर है, तथ्यों पर है। वो काफ्का की एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा वास्तविक तस्वीर बनाते हैं। वो छवि जो उनके दोस्त मैक्स ब्रॉड ने बनाई थी या बाद के आलोचकों ने, उससे ये काफी अलग है। किताब का जो सबसे बड़ा, जो केंद्रीय तर्क है, वो ये है कि फ्रांस काफ्का वैसे नहीं थे जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं।
मतलब
वो अकेले, उदास, समाज से कटे हुए टाइप।
हाँ बिल्कुल, रॉबर्टसन सबूतों के साथ दिखाते हैं कि इसके उलट काफ्का अपने शहर प्राग की सामाजिक सांस्कृतिक जिंदगी में, यहाँ तक कि अपनी नौकरी में भी काफी एक्टिव थे, जुड़े हुए थे।
सच में, ये तो काफी अलग बात है।
हाँ, उनके दोस्त थे, वो बहसों में हिस्सा लेते थे और अपनी बीमा कंपनी वाली नौकरी में भी मतलब काफी काबिल माने जाते थे।
तो फिर उनकी वो डरावनी सी, अजीब सी कहानियां, वो सिर्फ उनके पर्सनल दुख या पिता के साथ टेंशन का नतीजा नहीं है?
नहीं, रॉबर्टसन का तर्क है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो इन कहानियों को कहते हैं गहन विचार प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट्स।
विचार प्रयोग, ये क्या होता है? जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में कोई प्रयोग करता है, वैसे ही काफ्का अपने जीवन के अनुभव लेते थे। प्राग का माहौल, पिता का असर, नौकरी की नौकरशाही, और फिर पूछते थे, अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा?
दिलचस्प।
और फिर वो पूरी लॉजिक के साथ उसके नतीजों को कहानी में बुनते थे। तो ये रचनाएं सिर्फ कोई अंदरूनी डर या दुखड़ा नहीं है,
तो फिर क्या है?
ये उस जमाने के यूरोप की जो असल चिंताएं थीं, जो विरोधाभास थे, जो सिस्टम थे, उनकी पड़ताल है एक तरह से।
अच्छा, तो किताब का लक्ष्य काफ्का को रहस्यमयी बनाने के बजाय समझना और समझाना है।
हाँ बिल्कुल, किताब उन क्लीशियोस को तोड़ती है जो काफ्का से जुड़ गए हैं, कि वो तानाशाही के भविष्यवक्ता थे या कोई धार्मिक रहस्यवादी थे वगैरह। रॉबर्टसन उन्हें एक तेज, व्यंग्यात्मक और अपने समय की आधुनिकता को बहुत गहराई से देखने वाले लेखक के रूप में पेश करते हैं।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। शुरुआत करते हैं काफ्का के शहर प्राग से। रॉबर्टसन प्राग को कैसे दिखाते हैं?
रॉबर्टसन प्राग को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह के तौर पर दिखाते हैं, एक शहर जहां जर्मन, चेक, यहूदी संस्कृतियां एक साथ तो थीं, लेकिन तनाव भी था लगातार।
मल्टीकल्चरल लेकिन टेंशन वाला।
हाँ, और काफ्का इसी माहौल में थे। रॉबर्टसन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, त्रिस्तरीय अलगाव, ट्रिपल एलियनेशन।
त्रिस्तरीय अलगाव, ये क्या है?
पहला, वो जर्मन बोलते थे तो चेक लोगों से अलग हो गए। दूसरा, जर्मन समाज में वो यहूदी थे तो वहां भी पूरी तरह से अपने नहीं थे।
ठीक है।
और तीसरा, वो एक आधुनिक सेक्युलर यहूदी थे तो ना तो पारंपरिक यहूदी समाज से पूरी तरह जुड़े थे, ना ही पूरी तरह घुल मिल पाए थे।
ओह, तो हर तरफ से थोड़े बाहरी, ये एहसास तो उनकी कहानियों में बहुत आता है ना?
बिल्कुल, जैसे कोई कहीं भी पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहा।
और उनके पिता हरमन काफ्का, उनका जिक्र तो हमेशा आता है, वो पिता के नाम पत्र वाली बात, क्या वो सच में उतने ही जालिम थे?
रॉबर्टसन यहाँ भी थोड़ा बैलेंस लाते हैं। वो मानते हैं कि हरमन काफ्का यकीनन एक मजबूत, शायद डोमिनेटिंग पिता थे, लेकिन सिर्फ अत्याचारी नहीं थे।
अच्छा।
वो एक सेल्फ मेड कामयाब बिजनेसमैन थे, गांव की गरीबी से निकलकर शहर में जगह बनाई थी। वो प्रैक्टिकल थे। और वो जो पिता के नाम पत्र है, रॉबर्टसन उसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक कन्फेशन नहीं मानते, वो उसे एक लिटरेरी पीस की तरह देखते हैं जिसमें काफ्का ने उस जमाने के साइकोलॉजिकल आइडियाज का इस्तेमाल किया है सत्ता और व्यक्तित्व पर।
तो वो भी एक तरह का प्रयोग था।
हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता, पिता पुत्र का ये तनाव, ये जरूर उनके लेखन में सत्ता के अलग अलग रूपों, परिवार, कानून, राजसत्ता को दिखाने का आधार बना। द जजमेंट जैसी कहानी इसी तनाव से निकली, जिसमें पिता बेटे को मौत की सजा सुनाता है।
और उनकी नौकरी बीमा कंपनी वाली, वो तो हमेशा लगता है कि अरे बेचारे लेखक को ये बोरिंग काम करना पड़ता था।
हाँ, यही आम धारणा है, लेकिन रॉबर्टसन इसे चैलेंज करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो नौकरी असल में बोरिंग नहीं थी, बल्कि उनके लिए अनुभवों का खजाना थी।
कैसे?
उस नौकरी की वजह से उन्हें फैक्ट्री दुर्घटनाओं, मजदूरों की हालत, सेफ्टी रूल्स और सबसे बढ़कर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, इसकी सीधी समझ मिली।
अच्छा।
वो अपने काम में अच्छे थे, उन्हें प्रमोशन भी मिला, और ये अनुभव उनके लेखन में साफ झलकता है, खासकर द ट्रायल में। वो नौकरशाही का चित्रण इतना असली लगता है।
तो नौकरी रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से रिसोर्स थी।
बिल्कुल, उनकी क्रिएटिविटी को फीड कर रही थी।
ये तो सच में एक अलग ही नजरिया है। अब आते हैं उनकी कुछ फेमस रचनाओं पर। द मेटामॉर्फोसिस, कायापलट, वो कहानी जिसमें आदमी कीड़ा बन जाता है, उसे रॉबर्टसन कैसे देखते हैं?
रॉबर्टसन उसे सिर्फ अकेलेपन या बेतुकेपन का सिंबल नहीं मानते, वो उसे फिर से एक सटीक विचार प्रयोग की तरह देखते हैं।
फिर से विचार प्रयोग?
हाँ। सवाल ये है, क्या होता है जब घर का कमाने वाला आदमी अचानक बिल्कुल बेकार, घिनौना बन जाए? रॉबर्टसन का विश्लेषण इस पे है कि परिवार इस अजीबोगरीब सिचुएशन से कितने रियलिस्टिक और लॉजिकल तरीके से निपटता है। शुरू में शौक, थोड़ी दया, फिर धीरे धीरे झुंझलाहट, उपेक्षा, और आखिर में जब ग्रेगर मर जाता है तो लगभग राहत।
अरे,
तो असली हॉरर ग्रेगर के कीड़ा बनने में उतना नहीं है जितना इंसानों के ठंडेपन और प्रैक्टिकलिटी में है।
ये तो सोचने वाली बात है कि ज्यादा डरावना क्या है, काया पलट या इंसानी रिएक्शन?
अच्छा, अब उनके अधूरे लेकिन बहुत मशहूर उपन्यास द ट्रायल यानी मुकदमा की बात करते हैं। इसे तो अक्सर तानाशाही का प्रतीक माना जाता है।
हाँ, माना जाता है।
रॉबर्टसन इसे पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये उपन्यास इससे कहीं ज्यादा है। उनके हिसाब से ये उपन्यास है व्याख्या के बारे में, इंटरप्रिटेशन।
व्याख्या मतलब?
नायक है जोसेफ के, उसे एक सुबह गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना कोई वजह बताए।
हाँ।
उसका पूरा स्ट्रगल उस कानून और अदालत को समझने में बीतता है जिसका उसे सामना करना है, लेकिन वो कानून, वो अदालत, वो बिल्कुल अपारदर्शी है, समझ से बाहर है।
तो कोर्ट पूरा नहीं है?
जरूरी नहीं कि वो बुरा या शैतानी हो। रॉबर्टसन कहते हैं वो बस अपने ही एक अंदरूनी समझ से परे लॉजिक पर चलता है। के की हार इसलिए होती है क्योंकि वो इंसानी तर्क और नैतिकता को एक ऐसी चीज पर लगाने की कोशिश करता है जो अमानवीय है, अपनी धुन में है।
वो सिस्टम को समझने की कोशिश में ही खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, सिस्टम शायद बुरा ना हो, बस उदासीन हो। ये काफ्केस की आम समझ से थोड़ा अलग है।
और उनका दूसरा अधूरा उपन्यास द कैसल, किला, क्या वहां भी कुछ ऐसा ही है?
द कैसल में स्ट्रगल थोड़ा अलग है पर उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग। इसका मेन थीम है अपनेपन और वैधता की तलाश, लेजिटिमेसी।
अच्छा।
नायक के एक गांव में आता है, दावा करता है कि उसे किले के अधिकारियों ने लैंड सर्वेयर के तौर पर बुलाया है, और फिर उसकी पूरी कोशिश इसी दावे को साबित करने, किले से कोई कन्फर्मेशन पाने, गांव में अपनी जगह बनाने में निकल जाती है।
और किला?
किला हमेशा दूर, रहस्यमयी, पहुंच से बाहर, अधिकारियों तक पहुंचना नामुमकिन, हर तरफ बिचौलिए, बाबू लोग।
रॉबर्टसन इसे देखते हैं मॉडर्न इंसान की पहचान, एक्सेप्टेंस और समाज में शामिल होने की एक अंतहीन और शायद बेकार कोशिश के सिंबल के तौर पर। आप कहीं पहुंचते हैं लेकिन कभी पूरी तरह अपनाए नहीं जाते।
इस पूरी बातचीत से रॉबर्टसन की किताब और काफ्का के बारे में कुछ खास बातें या संदेश क्या हैं जिन्हें श्रोता याद रख सकते हैं?
हाँ, कई चीजें हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, व्यक्ति बनाम दुर्गम अपारदर्शी सत्ता।
हाँ, ये बार बार आया। ये सत्ता परिवार हो सकता है, कानून हो सकता है या नौकरशाही। ये अपनी ही दुनिया में काम करती है और इंसान उसे समझने की कोशिश में थक जाता है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा, किसी सरकारी दफ्तर में या बड़ी कंपनी में।
बिल्कुल। और दूसरा?
दूसरा है अपराध बोध और निर्णय की प्रकृति। काफ्का की दुनिया में गिल्ट अक्सर बिना किसी वजह के आता है, या आपको दोषी मान लिया जाता है और पता ही नहीं क्यों।
हाँ, ये उनके पिता वाले रिश्ते से भी जुड़ता है शायद।
हाँ, शायद। और कई बार हम भी अपने रिश्तों में या काम पर बेवजह का गिल्ट महसूस करते हैं।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा, अलगाव और बाहरी होने का गहरा अनुभव। जैसा हमने बात की, ये काफ्का की अपनी जिंदगी से आया था।
प्राग में जर्मन भाषी यहूदी होना।
हाँ, उनके लगभग सारे किरदार बाहरी हैं, हमेशा अपनेपन, एक्सेप्टेंस की तलाश में, जो उन्हें कभी पूरी तरह नहीं मिलता। आज भी कितने लोग बाहरी महसूस करते हैं अलग अलग वजहों से।
और चौथा, आपने कहा था कि रॉबर्टसन जोर देते हैं कि उनकी रचनाएं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट थीं।
बिल्कुल, ऐतिहासिक विशिष्टता। वो सिर्फ यूनिवर्सल कहानियां नहीं हैं, वो अपने टाइम और स्पेस, 20वीं सदी का प्राग, वो ऑस्ट्रो हंगेरियन माहौल, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का आना, इन सब पर आधारित है। उन्हें उनके कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है।
और आखिरी, वो सबसे चौंकाने वाली बात।
हाँ, कि काफ्का की साहित्यिक मौलिकता उनके अलगाव से नहीं बल्कि उनके सामाजिक जुड़ाव से आई। उनकी नौकरी, उनके दोस्त, प्राग के कैफे, ये सब उनके लेखन को मसाला देते थे। वो दुनिया से भागे नहीं, दुनिया को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे।
रॉबर्टसन काफ्का के कुछ मशहूर कोट्स को भी अलग तरह से देखते हैं। कुछ ऐसे यादगार विचार हैं जो इस किताब से उभरते हैं।
हाँ, बिल्कुल। जैसे काफ्का का वो फेमस कोट है, एक किताब हमारे अंदर जमे हुए समुद्र के लिए कुल्हाड़ी होनी चाहिए।
हाँ, सुना है।
आमतौर पर इसे पर्सनल साइकोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन रॉबर्टसन कहते हैं कि ये सिर्फ निजी नहीं है, ये लिटरेचर की उस पावर के बारे में है जो हमें समाज की जो कठोर, जमी हुई, अन्यायपूर्ण सच्चाइयां हैं, उनका सामना करने की चुनौती देती है।
अच्छा, ये तो ज्यादा बड़ा मतलब हो गया।
हाँ, एक और विचार है जो उनकी पॉलिटिकल समझ दिखाता है और आज भी कितना सच लगता है। हर क्रांति भाव बनकर उड़ जाती है और पीछे केवल एक नई नौकरशाही का कीचड़ छोड़ जाती है।
ओह, ये तो काफी गहरा है।
ये दिखाता है कि काफ्का सिर्फ अपने अंदरूनी दुनिया में नहीं थे, वो सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की सीमाओं को भी समझते थे।
और वो विचार प्रयोग वाली बात भी याद रखने लायक है।
हाँ, कि काफ्का की रचनाएं विचार प्रयोग हैं। वो एक अजीब सी सिचुएशन लेते हैं और फिर लॉजिकली देखते हैं कि उसके क्या नतीजे निकलते हैं। इससे उनका लेखन सिर्फ अजीब नहीं रह जाता, उसमें एक बौद्धिक गहराई आती है।
और ये भी कि सत्ता जरूरी नहीं कि बुरी हो, वो अक्सर उदासीन और अपारदर्शी होती है। डर इसी अनजानेपन से आता है।
बिल्कुल, किसी बड़े ऑफिस में फाइल का अटक जाना इसी का छोटा रूप है शायद।
तो काफ्का को इस तरह रॉबर्टसन के नजरिए से समझने के बाद, क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी इसमें कुछ है, कुछ सीखने लायक?
हाँ, मुझे लगता है काफी कुछ है। पहली चीज तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी और बड़े सिस्टम्स को समझना।
जैसे?
चाहे सरकारी दफ्तर हो, कोई बड़ी कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सब अपनी एक लॉजिक से चलते हैं। कई बार इमोशनल अपील या बहस करने से ज्यादा जरूरी होता है उनकी प्रक्रिया को समझना। काफ्का हमें दिखाते हैं कि सिस्टम से इंसानी रिएक्शन की उम्मीद करना बेकार हो सकता है।
सही बात है। और
दूसरी बात, पावर डायनामिक्स को पहचानना। ऑफिस में, परिवार में, समाज में, काफ्का का लेखन हमें समझने में मदद करता है कि पावर कैसे काम करती है, कैसे वो गिल्ट पैदा कर सकती है और कैसे लोग अक्सर वहां से मंजूरी चाहते हैं जहां से मिल नहीं सकती, जैसे द कासिल में।
और तीसरी चीज,
तीसरी ये हमें बाहरी या अलग महसूस करने वाले लोगों के लिए ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। आज की दुनिया में माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट या बस किसी नए माहौल में ढलने की कोशिश, ये सब आम है। काफ्का का लेखन हमें उन लोगों के स्ट्रगल को बेहतर समझने में मदद करता है।
और शायद एक थोड़ी अलग सी सीख भी है।
हाँ, वो है काफ्का की तरह जीवन की बेतुकी और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में भी एक गहरा, थोड़ा व्यंग्यात्मक ह्यूमर खोजना।
अच्छा।
हाँ, जब चीजें बिल्कुल बेमतलब या अन्यायपूर्ण लगे तो शायद उनमें छुपी विडंबना को देखना, उस पर एक तरह से हंसना, उस सिचुएशन से डील करने का एक तरीका हो सकता है, निराशा को थोड़ी दूरी पर रखने का तरीका।
इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि महान लेखक भी कैसे मिथकों में घिर जाते हैं। रॉबर्टसन ने काफ्का को उस उदास जीनियस वाली इमेज से निकालकर एक ज्यादा असली, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अपने समय से ज्यादा जुड़ा हुआ इंसान दिखाया। ये जानना काफी रिफ्रेशिंग था।
और मेरे लिए सबसे अहम बात ये समझना है कि काफ्का का मतलब सिर्फ अंधेरा और निराशा नहीं है। काफ्का के लेखन में लॉजिक है, प्रिसिजन है, तीखा व्यंग है और हाँ, गहरा आयरोनिकल ह्यूमर भी है। रॉबर्टसन हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी लेखक या विचार को उसके सही ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में देखना कितना जरूरी है, ताकि हम क्लीशे से आगे बढ़ सकें। और काफ्का आज भी रेलेवेंट है क्योंकि वो उन सिस्टम्स और भावनाओं की पड़ताल करते हैं जिनसे आज भी जूझ रहे हैं, चाहे वो ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी हो, सामाजिक उम्मीदें हो या अपनी पहचान की तलाश।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।